नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत दुनिया में जीवन लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लोकसभा को बताया, रूसी सेना में भर्ती किए गए 91 भारतीय नागरिकों में से 14 को छुट्टी दे दी गई है। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 क्रीड़ा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के लिए अमन सहरावत का मुकाबला प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ऑकलैंड में आयोजित एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में जीवन लोकतंत्र का उदाहरण बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। स्वागत समारोह में भारत सरकार के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, सौमित्री खान, उच्चायुक्त निधा भूषण और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया। कल राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत अपने राजनयिक संबंधों को न्यूजीलैंड के साथ और सुदृढ़ करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि रूस की सेना में अब तक 91 भारतीय नागरिकों को भर्ती किए जाने की सूचना मिली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉ जयशंकर ने कहा कि इनमें से 14 लोगों को छुट्टी दे दी गई है और दुर्भाग्यवश 8 की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय नागरिक रूसी सेना से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सेवा के लिए अनुबंध किया था। हालांकि उन्होंने बताया कि कई मामलों में भारतीय नागरिकों को गुमराह किया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने 19 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि 10 मानव तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर धोखाधड़ी के लिए लोगों को गुमराह किए जाने पर डॉ जयशंकर ने कहा कि सरकार ने इसे राजनीतिक स्तर पर सभी संबंधित सरकारों के समक्ष उठाया है। अब तक कंबोडिया से 650, म्यांमार से 450 और लाओ से 548 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार काफी सतर्क है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ेगी और रेलवे की दक्षता में सुधार होगा। समुद्री माल ढुलाई विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के संबंध में मालवाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों को संबल प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद भोला सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय का एक सुझाव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए नए अवसर तलाशना है। यह यात्रा इस वर्ष जून में नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की भारत यात्रा के बाद हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति अनियमितता मामले में जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों में से हिरासत में थे और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया तेजी से जांच के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो दोनों के मामलों में जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया को दी गई जमानत की सराहना की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इसे सच्चाई और दिल्ली के लोगों की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेता मनीष सिसोदिया को दी गई जमानत का स्वागत किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला देश की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत है। इस बीच भाजपा ने श्री सिसोदिया के बारे में कहा कि वे अब भी एक आरोपी है। दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए अदालत में श्री सिसोदिया की जवाबदेही बनती है। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया को बताया कि श्री सिसोदिया 17 से 18 महीने तक जेल में थे। जांच में हुई देरी के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देशभर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल फोटो तिरंगे में बदल दी। श्री मोदी ने एक संदेश में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी साझा कर स्वतंत्रता का जश्न मनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक वक्तव्य में बताया कि 12 से 14 अगस्त तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सभी युद्ध स्मारकों पर पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। इस अवसर पर एक वीडियो संदेश में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन में स्वाधीनता के लिए भारत के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव पूरे वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्सव का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य और काकोरी की वीरगाथा के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करना है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय एथलीट कुश्ती एथलेटिक्स और गोल्फ में चुनौती पेश करेंगे। अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम बारवर के फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए प्यूर्तो रिको के टेरिन क्रूज से भिड़ेंगे। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला रात 9:45 पर शुरू होगा। एथलेटिक्स में भारत के पुरुष और महिला खिलाड़ियों की 4x400 रिले टीमें चुनौती पेश करेगी। पुरुषों की 4x4 रिले टीम दोपहर 2:45 पर ही टू में भाग ले रही है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर पेरिस ओलंपिक की महिला गोल्फ स्पर्धा में दूसरे राउंड के बाद 60 प्लेयर फील्ड में 14 स्थान पर रहे। नेपाल में प्रतिनिधि सभा की विधि न्याय और मानवाधिकार समिति ने संक्रमणकालीन न्याय संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। विधेयक में मानवाधिकारों के उल्लंघन, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और अपराधियों के लिए कम सजा के प्रावधानों पर प्रस्ताव किया गया है। समिति ने रिपोर्ट को कल सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी सदस्यों ने आज समाजवादी पार्टी के सदस्य जया बच्चन की टिप्पणी पर शोर शराबे के बीच राज्यसभा से वॉकआउट किया। शून्यकाल की समाप्ति के बाद सभापति जगदीप धनखड़, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर बयान दे रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति को लेकर टिप्पणी की। श्री धनखड़ ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आचरण सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। सभापति ने कहा कि सभापति को अपमानित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। इस शोर शराबे के बीच सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।